श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध चार अध्याय 14 श्लोक 46 4:14-46। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तस्य वंश्यः तु नैषादः गिरि कानन गोचरः येन आहरत जायमानः बेन कल्मषं उल्बणं। तस्य वंश्यास्तु नैषादा तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकानन गोचरः येन हरज्जायमानः बेन कल्मषमुल्बणम्। तस्य वंश्यास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्जायमानः कल्मषमुल्बणम् तस्य वंश्यास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्यायमानो बेन कल्मषमुल्बणम् तस्य वंश्यास्तु नैषादः तस्य वंशास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्यायमानो येन कल्मषमुल्बणम् तस्य वंशास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्यायमानो येन कल्मषमुल्बणम् माताजी तस्य वंशास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्यायमानो येन कल्मषमुल्बणम् तस्य वंशास्तु नैषादः गिरिकानन गोचरः येन हरज्यायमानो बेन कल्मषमुल्बणम् तस्य उसके निषाद के वंश्यः वंशज तु तब नैषादः नैषाद नामक गिरिकानन पहाड़ियों तथा जंगलों गोचरः निवासी जेन क्योंकि अहरत स्वयं धारण किया जायमान उत्पन्न होकर बेन राजा बेन का कल्मषम समस्त प्रकार के पाप उल्बणम अत्यंत भयानक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा बेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में यथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है तात्पर्य नैषादों को नगरों तथा कस्बों में नहीं रहने दिया जाता क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं फलतः इनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पेशे भी पापमय होते हैं लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों कभी कभी इन्हें किरात कहा जाता है काभी कभी कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार हो जाता है और वे सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कल्मष से मुक्त होना होता है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा बेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस अध्याय का नाम है राजा बेन की कथा, और लगातार आप लोग राजा बेन की कथा सुनते रहे, बहुत बेन के विषय में सुने। यद्यपि इस अध्याय का नाम है राजा बेन की कथा और उसी की कथा है, लेकिन यहाँ से अब थोड़ा चेंज ले रहा है, 2-3 श्लोक पहले से ही अब बेन के पुत्रों की कथा प्रारंभ हो रही है। बेन के अपत्यों की, बैन्य की कथा प्रारंभ हो रही है। तो जैसा आप पहले सुन चुके हैं, ऋषि लोग जब बेन का वध कर दिए, भगवान की निंदा से मरे बेन को अपने हुंकार से मार दिए, और फिर उपद्रव बढ़ गया, तो ऋषि लोग विचार करके और बेन के जांघे को मथे, तो उससे एक बौना उत्पन्न हुआ, जैसा आप पीछे वर्णन सुने, मधुआ प्रभु वर्णन किए थे। उसके हाथ पर छोटे छोटे थे, लेकिन ये कपोल प्रांत, गाल और इधर का हिस्सा बहुत बड़ा था, देखने में बहुत खराब लग रहा था। उसके आंख लाल लाल थे और बाल ताम्र मूर्धज, तांबे के समान ये भी पीले पीले दिख रहे थे। कभी कभी छोटा भी व्यक्ति होता है तो उसके अंग उस अनुपात में होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे भगवान भी वामन देव के रूप में आए, छोटे थे लेकिन उनका वर्णन है सर्वावयानुरूपा, उनका शरीर जिस साइज का था उसी साइज में सब अंग थे, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन यह बौना जो उत्पन्न हुआ वो बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि काक कृष्ण है, वामन देव अग्नि के लपट के समान चमक रहे थे। उनको दूर से ऋषि लोग देखे तो अनुमान करने लगे, क्या सूर्य देव आ रहे हैं कि मूर्तिमान अग्नि आ रहे हैं, ये कौन इधर आ रहा है कि सनत कुमार हैं। लेकिन यह तो एकदम कौआ जैसा काला था। ऋषि लोग इसी आशय से मंथन कर रहे थे कि कोई राजा होना चाहिए, वो लोग राजा बनाने के लिए मंथन कर रहे थे। तो एक बार तो अब राजा बना करके देख लिए थे, अब तो दूध का जला मुंह माटा फूंक करके भी पीते। एक बार राजा बना करके देख चुके थे, मंथन किए थे राजा बनाने के लिए, लेकिन इसके रूप को ही देख करके समझ गए कि ना, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है, ये राजा लायक नहीं है। वो कहते निषिद्ध, बैठ जाओ। ये शिष्ट भाषा है, कभी कभी किसी का कुछ कार्य नहीं करना होता है तो ऐसे लोग बोल देते हैं ऑफिस में, हाँ बैठिए बैठिए। अरे कितना देर तक बैठिए। तो राजा नहीं बनाना चाहते थे, इससे कह दिए कि बैठ जाइए। तो वो बैठ गया, और इसलिए वो आकर के पहले पूछा क्या करूं, तो राजा उसको बनाना नहीं था, तो निषिद्ध इति ब्रुवंशता तो स निषादस्तो तो हो, सबसे पहले वो कहे कि बैठ जाए, इसी से उसका नाम निषाद हो गया। अब उसके वंश का वर्णन कर रहे हैं, तस्य वंश्यास्तु नैश्चाता, गिरी का अन्न गोचर है, उसके वंशजों को नैषाद कहते हैं, निषाद के अपत्य को नैषाद कहेंगे, लेकिन उसका परिचय दे रहा है निषाद के वंशजों का कि गिरी का अन्न गोचर है, निषाद के वंशज हुए लेकिन कभी उनको सिटी में या गांव में लोग नहीं देखते हैं, वे जंगल पहाड़ नदी के किनारे दिखाई देते हैं। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि जाय मान अहज अहरत बेन कल्बस मूल बन, जाय मान वो जन्मते ही जन्म ले रहा था उसी समय, मतलब जन्मने के तुरंत बाद जो बेन का भयंकर दोष अंश था, कलमस था, उसको ग्रहण कर लिया, और कलमस ग्रहण कर लिया तो उसमें प्रवृत्ति चोरी मांस भक्षण शराब ये सब का प्रवृत्ति है, तो चोरों को गांव में क्यों अलाउ किया जाएगा? तो निषाद के वंशज नैषाद हुए, इनके प्रवृत्ति पाप कर्म में होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके कह रहे हैं कि इस जाति के लोग भी भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, जाति के प्रभाव से जन्म से ही इनकी प्रवृत्ति बुरे कर्म में है, पाप में है, लेकिन फिर भी भक्तों के संग से भक्ति के अनुकूल अवसर पा करके ये लोग भी भक्ति में उन्नति करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के विषय में समझना चाहिए कि यही परम पुरुषार्थ है, सवई पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। किसी भी व्यक्ति का परम धर्म, वास्तविक धर्म यही है जिस कार्य से, जिस आचरण से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और उस भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि अहैत तो की अप्रतिहता। भक्ति योग का, भक्ति के दो विशेषण दे रहे हैं, अप्रतिहता और अहैत की। भक्ति का कारण कोई दूसरा नहीं है, भक्ति का कारण केवल भक्ति है, भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। एक बार मैं यह बात कह दिया तो बहुत लोग प्रश्न करने लगे, मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कह दिया न भक्ति के कारण भगवान है न भक्त है, ये विरोधी जैसी बात लगने लगी, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि भक्ति का कारण भक्ति है, और शास्त्रों में लिखा गया है कि भक्ति का कारण भक्तों का संग है। ऐसा आप नहीं कहीं वाक्य पढ़ेंगे कि भक्ति के कारण भक्त है, जहां भी पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, तो ये यह कह मैं कह दिया कि भक्ति के कारण केवल भक्ति है, ये कोई विरोधी बात नहीं मैं कह दिया था, इसको समझना चाहिए। वैसे भक्त और भक्ति को अलग करना यह कठिन कार्य है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा विश्लेषण के दृष्टि से विचार कीजिए तो भक्त का संग करते हैं उसे भक्ति की प्राप्ति होती है, तो अब भक्त और भक्ति को अलग कर दें तो भक्त से भक्ति प्राप्ति होती है कि भक्ति से प्राप्ति होती है, इस विषय को समझना चाहिए। एक्चुअली सच्चाई या सिद्धांत यह है कि हम भक्त का संग करते हैं तो उस भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसी से भक्ति की प्राप्ति होती है, तो अहेतु की इसका कोई हेतु नहीं है, केवल भक्ति ही हेतु है, चाहे वो अपनी भक्ति हो सकती है या दूसरे की भक्ति हो सकती है, दोनों के केस में दोनों ही स्थिति में भक्ति ही कारण है। और सच्चाई यह है कि अपनी भक्ति अधिकांश स्थिति में निम्न स्तर पर होता है या भक्तों के भावना दैन्य की होती है तो निम्न ही मानते हैं। तो श्रीमद्भागवतम में एक श्लोक आया है, न जस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्ध माविशत यद भक्ति योगान गृहीत मंजस यद भक्ति योगान गृहीतम। इसमें यद शब्द है, इसका पीछे से संबंध है। पहले उस स्तोत्र में शुद्ध भक्तों के संग की मांग की गई। एक प्रश्न हो सकता है कि क्यों शुद्ध भक्तों के संग का मांग कर रहे हैं। अरे भक्ति का लक्ष्य तो भगवान है, भगवान सामने है, भगवान को छोड़ करके अब भक्तों का संग मांग रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया गया है कि यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, जो शुद्ध भक्त हैं उनके भक्ति योग का अनुग्रह प्राप्त करके, जो शुद्ध भक्त हैं उनके भक्ति का अनुग्रह प्राप्त करके भगवान के गति को व्यक्ति, भगवान के माधुर्य को व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो भक्ति के विषय में अहेतुकी यह समझना चाहिए कि भक्ति का कारण केवल भक्ति है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और अप्रतिहता है कि भक्ति को कोई भी भौतिक परिस्थिति दबा नहीं सकती है, बाधित नहीं कर सकती है, उसको मार नहीं सकती है। चाहे शरीर के दृष्टि से किसी का कोई रंग हो, कोई रूप हो, कोई वृत्ति हो, या कोई लिंग हो, कोई उम्र हो, यह सब भक्ति को नहीं दबा सकता। अप्रतिहता है, अप्रतिहता का यही अर्थ एकदम जिस चीज की आप कल्पना कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई भी भौतिक स्थिति है वह भक्ति को दबा नहीं सकती है। तो जो निषाद के वंशज हुए इनकी प्रवृत्ति पापमय है, लेकिन ये लोग भी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत उन्नत स्तर की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, ये जो पाप जोनी है या शूद्र है, वैश्य है, स्त्री है, कोई भी भगवान के धाम को प्राप्त, भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का संबंध भगवान से है। ये भौतिक स्थिति चाहे जैसी भी मिल जाए, भगवान का संबंध बाधित नहीं होगा। उस संबंध है तो उसको उभारा जा सकता है। अब तो यह बात कहने पर बहुत प्रश्न आने लगता है, लोग फोन करके क्या क्या प्रश्न करते रहते हैं कि स्त्रियों को भगवान क्यों इस लिस्ट में डाल दिए। अब इसका उत्तर तो हम यहां नहीं देंगे, लेकिन इतना समझिए कि अधम स्तर पर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों की भी गणना की गई है, लेकिन जहां भक्ति की बात है तो सर्वोच्च स्थान स्त्रियों का है। और उद्धव जैसे लोग कहते हैं किमा स्त्रिय बनचरी, अरे ये स्त्रियां किमा स्त्री, एक तो जाति से स्त्री है और दूसरी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वन में रहने वाली है, गोबर पाथने वाली है, और क्यों इनका भाव कितना रूढ़ है और हम लोग तो व्यभिचार दुष्ट है। उद्धव जो स्वर्ग से पढ़ करके आए हैं वे कह रहे हैं कि हम लोगों का मन तो इधर उधर जाता रहता है, ये व्यभिचार में लगा मतलब विचलित होता रहता है, और ये गोबर गोइठा करने वाली स्त्रियां परमात्मा में, भगवान में इनका भाव बिल्कुल रूढ़ है। तो स्त्री को कुछ दृष्टि से अधम जोनी में ही रखा गया है, लेकिन जहाँ भक्ति की बात है तो वहाँ स्त्रियों का सर्वोच्च स्थान है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वैसे ही जो निषाद के वंशज हैं और प्राय मांसाहारी होते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, जाति से यही प्रवृत्ति है। लेकिन इस जाति में भी लोग भक्त हुए हैं, बहुत उन्नत भक्त हुए। भक्ति अब भौतिक स्थिति से संबंध नहीं है, भगवान की चिन्मय वृत्ति है, अतरंगा वृत्ति की शक्ति और कहीं प्रकाशित हो सकती है। भगवान कहीं अवतार लेना चाहे तो कोई उनको रोक सकता है? सुअर के जोनी में अवतार ले लेते हैं, मछली की जोनी में अवतार ले लेते हैं। तो जैसे भगवान किसी जोनी में अवतार ले लेते हैं, वैसे भगवान की शक्ति भी कहीं भी अवतरित हो सकती है। और ऐसा प्रमाण मिलता है, हर जाति में लोग भक्त हुए हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जाति के लोग भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकट उदाहरण है, आप भगवान राम की कथा सुनते हैं। भगवान को नगर छोड़ करके वन में जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा भले ही समाज के द्वारा निषाद जाति के लोग निष्कासित हैं, वे गांव में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, वन में रहते हैं। लेकिन भगवान जब वन में गए तो उनको अवसर मिला। जब भगवान अयोध्या छोड़ करके गए, नगर से दूर जाने पर, वन के नजदीक जाने पर, प्रथम व्यक्ति जो भगवान का सत्कार किया वह निषाद वंश का ही है। गुह उसका नाम है, निषाद राज उनको कहते हैं। निषाद राज इस अर्थ में है कि जो निषादों का समुदाय था उसका वह सरदार था। आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब उनका गांव कस्बा से दूर रहते हैं तो राजा किसका हो गया? वो गांव कस्बा से दूर रहते हैं लेकिन जहां रहते हैं तो उनका भी तो गांव बन जाता है, छोटा छोटा बन जाता है ना। तो निषादों का वह सरदार था, राजा था। और भगवान तो रात्रि के समय अयोध्या से निकल गए। यद्यपि जब भगवान गए तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उनके परिवार के लोग, उनके जो अतरंग लोग थे, वे भगवान को नहीं भेज रहे थे, रोक रहे थे। वे लोग भी जगे थे, लेकिन जो सामान्य जनता थी तो उसमें से अधिकांश लोग सोए हुए थे। नगर के जो और लोग थे वे सोए हुए थे, उनको नहीं पता चला कि भगवान कब निकल गए, ये सोए थे। अब जब सोए थे उनको कुछ पता नहीं चला कि कब जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुली, जैसे ही जगे, और बस सब जगह आवाज, उनको प्रथम आवाज यही सुनाई दिया कि भगवान चले गए। जाके सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। भोर में वे जगे तो सब जगह यही शोर मचा हुआ था कि रघुनाथ चले गए। अब यह समाचार सुन करके तो अयोध्या के लोग बहुत दुखी हुए। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल बड़ बनिक समाजु। उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कोई बनिया या बनियों का समुदाय व्यापार के लिए अपना बहुत माल लाद करके किसी जहाज से भेज रहा है, बड़े नौका से भेज रहा है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए वही साधन था। अब उस पर कीमती कीमती सामान लेकर के भेजा है और वह जहाज डूब जाए तो अब बनिया को जैसे दुख होता है वैसे अयोध्या के लोग दुखी थे। और एक कहीं एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु। अब एक दूसरे से लोग कहने लगे कि भगवान हमको नहीं बतलाए, अयोध्या छोड़ दिए, क्योंकि समझते थे कि हम लोगों के सामने जाएंगे तो हम लोगों को दुख होगा, तो हमारे दुख को विचार करके ही वे रात्रि में छोड़ दिए। निंद ही आप सराहे मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। वे लोग अपनी निंदा करने लगे और मछली की बड़ाई करने लगे। क्या मतलब है कि वे कह रहे थे कि वास्तव में मछलियों का प्रेम पानी से है, पानी से अलग होते वे जीवित नहीं रहती है, लेकिन हम लोग तो एकदम थर्ड क्लास है, हम लोगों का प्रेम रघुनायक से नहीं है। रघुनाथ से यदि प्रेम होता तो उनसे अलग हो करके हम जीवित नहीं रहते। तो ऐसे वे बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे थे। और अब भगवान तो निकल चुके थे, ये जो पूर्वासी थे वे बहुत दुखी थे। वे अब विधाता को गाली देने लगे। जौ पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तौ कस मरण मांगे दीन्हा। वे विधाता कहने लगे कि उसको हम लोगों का सुख अच्छा नहीं लग रहा था, अब भगवान को जंगल में भेज दिया, वो भेज दिया ठीक है, अब उसको नहीं पसंद था भेज दिया, लेकिन हम लोग मरना चाहते हैं तो मृत्यु की सुविधा देनी चाहिए ना, तो मरने नहीं देता है, मौत नहीं दे रहा है। विषम वियोग न चाहि बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। अब रहे कि अब अयोध्या के लोग कितने विकल थे इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अब उनकी एक ही आशा थी कि 14 साल के बाद फिर राम का दर्शन होगा। तो राम दर्श हित नेम व्रत, लगे करण नर नार, मनह कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। से सूर्यास्त होने पर कमल कुम्हला जाता है। वैसे सब लोग दुखी थे, लेकिन एक आशा थी कि 14 साल के बाद आएंगे, तो बस उसी आशा को पूर्ण करने के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए विविध प्रकार का नियम ले लिए, जप बढ़ा दिए, व्रत करने लगे, सब लोग नर नारी सब करने लगे। लेकिन अब भगवान तो निकल चुके थे, तो कह रहे हैं कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाए। सीता के सहित दोनों भाई जा रहे हैं, रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, सुमंत्र जी ले जा रहे हैं, तो वे लोग श्रृंग बेरपुर पहुंच गए। और उतरे राम देव सरी देखी, किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। भगवान जय गंगा जी को देखे तो रथ से उतर गए गंगा जी के सम्मान में, और गंगा जी को दंडवत प्रणाम किए, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। लखन सचिव से किए प्रणाम, सभी सहित सुख पाय राम। और जैसे भगवान गंगा जी का सम्मान किए, वैसे ही सीता जी की और लक्ष्मण जी किए, सुमंत्र जी भी किए, और भगवान उनके साथ गंगा के तट पर बहुत सुखी हुए। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब मूला। वो गंगा जी के विषय में कह रहे हैं वे सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं और सब प्रकार के दुख को दूर करने वाली हैं। वे तो सब प्रकार के श्रेय के स्रोत स्वरूप हैं। तो ऐसे भगवान गंगा जी के तट पर बैठ करके गंगा की महिमा कहने लगे, और इसके बाद गंगा में स्नान किए और जलपान किए। और कह रहे हैं कि गंगा जी में स्नान करने से भगवान का श्रम थकान दूर हो गया। इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कवि, यह तो एक कहने की बात है, जिनका नाम लेने से संसार सरणी का श्रम दूर हो जाता है, अब उनको श्रम का कहाँ सवाल है। लेकिन भगवान तो ऐसी लीला कर रहे हैं कि इस लीला को करने से एक तो मनुष्य कुछ सीखेंगे और उन लीला का गान करके वे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त करेंगे। तो यह तो उनका एक लीला मात्र है। वो भगवान गंगा जी के तट पर बैठे हैं और गंगा स्नान इत्यादि करके और अब थकान उनका दूर हो गया और उसी समय निषाद राज को यह पता लग गया कि भगवान राम इधर आए हैं। अब तो जे वहीं इस बात को वह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और जे वहीं उसको यह पता चला, यह सुधि गुह विषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, जे वहीं इसको यह पता चला कि राम आए हैं, भगवान राम आए हैं, तो तुरंत अपने संबंधियों को बुला लिया और लिए फल मूल भेंट भारी भरी भारा मिलन चलाव ही हर्ष अपारा। जे पता चला तो तुरंत कुछ फल और उपहार कलेक्ट करके और उसको बहंगी बना करके जैसे बांस के दोनों सिरे पर टोकरी ले करके और सबके साथ चले। कह रहे हैं कि करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, और भगवान के नजदीक आया और भेंट की सामग्री भगवान को दे करके और प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे भगवान का दर्शन करने लगा। सहज स्नेह विभस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई, और भगवान में तो सहज प्रेम है, स्नेह है भक्तों के प्रति। जब उपहार लेकर के आया और स्नेह से भगवान राम का दर्शन कर रहा है तो भगवान भी उसको निकट बुला लिए और उसका समाचार पूछने लगे। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयव भाग भाजन जन लेखे, तो कहना कि आपके चरणों का मैं दर्शन कर लिया तो यही सबसे बड़ी कुशलता है। अरे आपके दर्शन करने से तो हमारा तो भाग्यशाली लोगों के प्रशंसनीय लोगों के लिस्ट में नाम जुट गया। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना मोह दिन पितु आय सुजाना, नहीं ना देव धरणि धनु धाम तुम्हारा मैं तनु नीच सहित परिवार। और वो कहने लगा कि हे नाथ आपके चरण का दर्शन हुआ और हमारा जो भी राज्य है, जो भी जमीन हमारे अधिकार में है या धन है या हमारा घर है वह सब आपका है, और जो हमारे परिवार के छोटे तबके के परिवार के लोग हैं वे सब आपके सेवक हैं। तो नज़दीक आया भगवान, गांव के नज़दीक आए हैं, तुरंत प्रार्थना करने लगा, कृपा करिए पूरे धारिय पाऊ थापिए जन सब लोक सिहाऊ। कहा कि एक कृपा हम पर कीजिए कि आप गांव में चलिए, हमारे घर चलिए, ऐसा चलने से हम प्रशंसनीय लोगों में स्थापित हो जाएंगे। यदि आप हमारे घर चलते हैं तो सब लोग हमारी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन अब भगवान को स्नेह है निषाद से, उसको नज़दीक बुलाए हैं, उससे कुशल पूछ रहे हैं, लेकिन जब यह प्रस्ताव दिया कि हमारे घर चलिए तो भगवान कहने लगे, कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना मोह दीन पितु आय सुआना। भगवान कहने लगे कि तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन हम एकदम सत्य सत्य कह रहे हैं कि भगवान हमारे पिताजी हमको कुछ और आज्ञा दिए हैं, बरस भी क्या आज्ञा दिए हैं, तो बरस चारि दस वासु बन मुनिव्रत नेमु आहा बेसु आहार ग्राम वासु नहीं उचित सुने गुहाई भयो दुख भार। भगवान राम कहे कि पिताजी आज्ञा दिए हैं कि 14 साल तक वन में रहना है, मुनियों का व्रत धारण करना है, बेश धारण करना है, उन्हीं का आहार लेना है, तब इस स्थिति में गांव में जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब यह बात सुना गुह निषाद राज और उसको बहुत दुख हुआ, और राम लखन सिय रूप निहारी कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी। उसके अपने समाज को लेकर के आया था, सबके साथ आया था अब कह रहे हैं कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के रूप को देख करके अब ग्रामवासी कहने लगे, ते पितु मात कहूं सकी कैसे जिन पठये बन बालक आए थे। वे आपस में बात करने लगे कि कैसे माता पिता है ऐसे बालकों को जंगल में भेज दिए, एक कहें भल भूपति किन्न, लेकिन दूसरा कहने लगा कि अरे अच्छा किए वन में भेज दिए, तो लोयन लाभ हम ही विधि दीन है, ये विधाता के विधान है, जंगल में भेजे तभी हम लोगों को आंखों का लाभ मिल गया। ऐसे वे आपस में बात करते हैं। तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। देखिए प्रेम का स्वभाव होता है वे अपने प्रेमी का अनुकूलन करता है। कभी कभी लोग इतना आग्रह करने लगते हैं, सेवा के नाम पर दुख देना देने लगते हैं। वो अपने घर ले जाना चाहता था और बहुत प्रतिष्ठा बढ़ती उसकी, ये कह रहा है कि हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, एक मन में आ जाता है ना, लोग प्रशंसा करते हैं, भीतर से भी रहता है हमारे यहाँ ये महाराजा है, ये महाराजा है, कोई इस्कान के गुरु जाते हैं, सन्यासी जाते हैं, उसी से हम लोगों का गौरव बढ़ जाता है। भगवान चले जाएं तो कितना गौरव बढ़ेगा, लेकिन जब भगवान ने अपनी मजबूरी बतला रहे हैं कि मैं पिता के आज्ञा से आया हूँ और गांव में जाना हमें ठीक नहीं है, तो तुरंत निषाद राज इस बात को स्वीकार कर लिया, आग्रह नहीं किया, वही देखने लगा। तो एक अशोक का वृक्ष था, उसको लगा कि यहाँ भगवान को रात्रि में रुकना ठीक होगा, तो भगवान को ले जा करके दिखाया, भगवान कहे कि ठीक है, तो अपने हाथ से पहले नीचे कुश बिछा दिया, लेकिन कुश से पवित्र तो होता है लेकिन कुश का ऐसा स्वभाव है कि कट भी जाएगा, तो नीचे पवित्रता के लिए कुश डाल दिए, इसके बाद कोमल कोमल पत्ता जुटा करके और अपने से वहाँ आसन बनाए, अपने हाथ से आसन बनाए और उसी पर भगवान विश्राम किए। तो हम यह कह रहे हैं कि प्रथम दिन का रिसेप्शन इसे निषाद वंश के द्वारा हुआ और ये भगवान के परम प्रेमी भक्त है, तो बेड लगा दिए, भगवान राम उस पर सोए और लक्ष्मण जी भगवान का चरण दबाने लगे। और लक्ष्मण जी जब ऐसा अनुभव किए कि भगवान अब सो गए हैं, गाढ़ नींद में सो गए, तो लक्ष्मण जी छोड़ करके अब चरण दबाने छोड़ करके और थोड़े दूरी पर वीरासन से धनुष बाण लेकर के बैठ गए। जब निषाद राज देखा कि लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में बैठे हैं और जितने भी उसके विश्वासी प्रहरी थे, वो राजा था तो चुन चुन करके कई एक प्रहरी को लाया और लक्ष्मण जी से प्रार्थना करने लगा कि आप विश्राम कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, सुरक्षा का भार हम पर छोड़ दीजिए, आप विश्राम कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, लक्ष्मण जी उस समय सोए नहीं और वे भी वहीं बैठे रहे। और अब लक्ष्मण जी से वे बात करने लगा, भगवान सामने सोए हैं उनको देख करके वह कहने लगा, वो दशरथ जी का घर स्वाभाविक ही अति उत्तम है, इंद्र से उनकी मित्रता है, सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन वैसे घर को छोड़ करके खास करके सीता जी के तरफ ध्यान करके लोग कह रहे हैं कि सीता जी को इस खुले जगह में जंगल में सोने को सोना पड़ रहा है, तो ये लोग कहने लगे कि सत्य कहा गया है कि भाग्य बहुत प्रबल है, सब सुविधा है, नैहर में ससुराल में सब सुविधा है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है लेकिन समय के अभाव में तो हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वे कहने लगे कि भाग्य प्रबल है, और बहुत बहुत बात कहने लगे। लक्ष्मण जी कुछ देर तक तो सुनते रहे, वे लोग कहने लगे कि कई कई का सब दोष है, सब यह कुरुपात की है, उसके चलते इनको यहाँ जंगल में सोना पड़ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत उनको समझाने लगे, दोनों बैठे हैं, बातचीत होने लगी, वे कैकेयी की निंदा करने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे कि देखिए, यह जो सुख दुख है, सुविधा असुविधा है, यह तो मन का विलास है। ये संसार के जो सुख दुख हैं वे वैसे ही है जैसे सपना में कोई सुविधा पा जाए या कष्ट पा जाए। सपना में कोई स्वर्ग में ही चले जाए, अमरावती में चले जाए, लेकिन जगने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही आप जो सुख सुविधा की बात कर रहे हैं और असुविधा की बात कर रहे हैं, तो ये तो केवल मन का विलास है। और वास्तव में इसी मनोविलास में संसार के सारे प्राणी जी रहे हैं। और सच्चा भी जागना तो योगी लोग हैं, वे यथार्थ को समझते हैं। तो सुख दुख तो स्वप्न के समान है। और सच्चाई यह है कि भगवान को, राम को इस सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, वे तो सच्चिदानंदमय हैं। ये तो लीला कर रहे हैं इसलिए कि लोग इसको सुन करके और भगवान के धाम को पा जाए। बहुत लंबा प्रवचन किए हैं लक्ष्मण जी, लेकिन एकदम अंत में कंक्लूजन कह रहे हैं कि भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। कहते हो भगवान तो भक्तों के हित के लिए, पृथ्वी के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गायों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, और यह केवल नर लीला कर रहे हैं। और सुनत मिटहि जग जाल, जो व्यक्ति इस लीला का केवल श्रवण करेगा तो उसके संसार का झंझट समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये दोनों बात करते करते बात कर रहे थे और तब तक बिहान हो गया। तो जो निषाद राज है, निषाद वंश का है, वह भगवान का प्रथम स्वागत किया जो भगवान को पसंद था उसके अनुरूप। और ऐसा व्यक्ति है कि भगवान के कथा सुनते हुए, लक्ष्मण जी का उपदेश सुनते हुए पूरा रात्रि व्यतीत हो गई। तो हम यह कह रहे हैं कि हर वंश में भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, भक्ति किसी को प्राप्त हो सकती है। और वही गुहा निषाद राज जब भरत जी से मिलने लगा, पहले तो वह सुना कि भरत जी आ रहे हैं, इतने लोगों के साथ आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ कि पहले तो वनवास दे करके राज ले लिया है, लेकिन 14 साल का शर्त है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि युद्ध करने के लिए आ रहा है कि अब राम को वन में मार दें कि सदा के लिए हमारा राज्य हो जाए। तो ऐसी आशंका करके वो जब ही सूचना पाए कि भरत आ रहे हैं, अपने सब गांव वालों को बुलाया और कहा कि सारे नायों को डुबा दो गंगा जी में, और तुम लोग अपने जान पर बाजी लगा करके तट पर खड़ा हो जाओ, उसको इधर नहीं जाने देना है। और वो संकल्प किया कि मेरे जीते जी तो कोई राम से युद्ध करने नहीं जा सकता। लेकिन जब उसको पता चला कि नहीं, भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं, ओ पता चलते ही जा करके भरत जी के चरणों में वह गिर गया। और भरत के चरणों में जब गिरा तो भरत जी उसका आलिंगन करने लगे। जो गांव से बाहर रहते हैं और उसका आलिंगन करने लगे, देवता लोग तो पुष्प की वृष्टि करने लगे। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे और वह भरत जी का आलिंगन पा करके विदेही हो गया, मतलब देह की शुद्धि खो गया। और अपने से कहने लगा कि कपटी कायर कुमति सुजानी लोक वेद बाहिर सब भांति, कि मैं तो कपटी हूँ, डरपोक हूँ, कम बुद्धि का हूँ, कुजात हूँ। अरे हम इतने नीच हैं कि परछाई पड़ जाने पर भी लोग स्नान करते हैं, लेकिन हमको यह सौभाग्य मिल रहा है। तो राम किन्ह आपन जब हीते भयो भुवन भूषण तब हीते। वे कहने लगा कि इसका मूल रहस्य यह है कि जब भगवान जब ही हमको अपना बना लिए, हमसे सख्य कर लिए, दोस्ती जोड़ लिए, और उसी समय से मैं तो भयो भुवन भूषण तब ही से मैं तो इस त्रिभुवन का श्रृंगार बन गया। तो भक्ति की महिमा है। जाति के दृष्टि से देखा जाए तो वेद में भी निंदनीय है, भागवत में सुन रहे हैं उस जाति के विषय में, और लोक में भी प्रसिद्धि है। वो गांव से दूर रहते, कदाचित उनके स्पर्श करने की बात तो दूर है, उनकी छाया का स्पर्श होने से भी लोग स्नान करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भरत जी अपने अखबार में भर लिए हैं, और इस दृश्य को देख करके देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। ये भक्ति की महिमा, और वह भक्ति भगवान की अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वह कहीं उदित हो सकती है, कोई भी भौतिक परिस्थिति उसको बाधित नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद इस निषाद बंद से के जातिगत स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भक्ति कहीं भी उदित हो सकती है, कोई भी भक्त हो सकता है, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इसका प्रकट अनुभव हम लोग कर रहे हैं, सब लोग भक्त हो रहे हैं। हम लोगों के गांव में भी निषाद जाति का बस्ती है, और वहां के भी कई एक लोग एकदम शुद्ध भक्ति में है, वृंदावन में रहते हैं और बढ़िया से नियम का पालन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखे हैं कि जो शराब भात में खाते थे, उस गांव में जाने पर, आज भी जाने पर एकदम उस शराब का दुर्गंध फैला रहता है, क्योंकि खुद वो शराब बनाते हैं, लेकिन वैसे जगह पर भी कीर्तन हो रहा है। वे लोग हर एक साल ब्रज में आते हैं, अपने लड़कों को बरसाना में पढ़ा रहे हैं। तो यह भक्ति की महिमा है, भक्ति की शक्ति है, वह कहीं उदित हो सकती है, इसमें भौतिक स्थिति का महत्व नहीं है। हरे कृष्ण।